कृष्ण
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानन्दना जय ब्रज जन रञ्जना जय ब्रज जन रञ्जना यशोदानन्दना जय ब्रज जन रञ्जना जय ब्रज जन रञ्जना यमुना तीरवन चारे जय कुंज बिहारी जयो यमुना तीरवन चारे जय कुंज बिहारे जयो राधा माधव जयो कुंज గోపిజన వల్లభ జయ గిరివర ధారే జయ గిరివర ధారే యశోదానందన జయ బ్రజ జన రంజన జయ బ్రజ జన రంజన యశోదానందన జయ బ్రజ జన రంజన జయ బ్రజ జన రంజన యమునా తీరవన చారే జయ కుంజ విహారే జయ యమునా తీరవన చారే జయ కుంజ విహారే జయ జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారీ రాధే రాధా మాధవ జయ కుంజ పరివ్రాజకచార్య అష్టోదరక్ శ్రీ శ్రీమతిస్ డివైన్ గ్రేస్ శ్రీల భయచరణారవింద భక్తి వేదాంత గోస్వామి మహారాజ్ శ్రీల ప్రభుపాదకి ఇస్కాన్ పుర సంస్థాపకాచార్య శ్రీల ప్రభుపాదకి జయం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకచార్య అష్టోదరక్ శ్రీ శ్రీమతిస్ డివైన్ గ్రేస్ శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ప్రభుపాదకి అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి నామాచార్య శిల హరదాస్ ఠాకూర్కి ప్రేమ్ సి కహో శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నితానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృందకి శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణ గోప గోపినాథ్ శ్యామకుండ రాధాకుండగిరి గోవర్ధన్కి బ్రజభూమి శ్రీ బృందావన ధామకి పురుషోత్తమ క్షేత్ర శ్రీ జగన్నాథపురి ధామకి జైనవద్వీప మాయాపూర్ ధామకి గంగామాయికి జమునామాయికి భక్తిదేవికి కృష్ణ భక్తి ప్రదాయని శ్రీమతి తులసీ మహారాణికి కలియుగ పావన్ హరినామ సంకీర్తన్కి హరే కృష్ణ మహామంత్రకి శ్రీల ప్రభుపాద ట్రాన్స్లేషనల్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి జయ గ్రంథరాజ శ్రీమద్భాగవత్ మహాపురాణకి నితాయ గౌర ప్రేమానందే ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీ గురు అండ్ శ్రీ గౌరాంగ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురోన్మిలితం యేనం తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమ ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీదేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాదీ పాశ్చాత్యదేశతారిణే పంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూపస్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత శ్రీరాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్తకాంచన గౌరాంగీ శ్రీరాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ. ప్రణమామి హరిప్రియే శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభునితానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామో హరే రామో రామ రామో హరే హరే. గ్రంథరాజ శ్రీమద్భాగవతం అధ్యాయ 6 అధ్యాయ 11 స్కంద 6 శ్లోక క్రమాంక్ 24. అహం హరే తవ పాదైకమూల దాసాను దాసో భవితాస్మి భూయ. मनस्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय अहम् हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय अहम् हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय
मनस्मरे तासु पते गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः अहम् हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः
अहम् मैं हरे हे भगवान तव तुम्हारे आपके पादेकमूल जिसकी एकमात्र शरण भगवत चरण कमल है दासानुदासः आपके दास का भी दास भवितास्मि होऊंगा भूयः पुनः मनः मेरा मन स्मरेत स्मरण करे आसुपते मेरे जीवन के स्वामी का गुणान गुण समूह ते आपका गृणीत जप करें, वाक मेरे शब्द, कर्म आपकी सेवा के लिए कार्य, करो तो करे कायह मेरा शरीर। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे श्री भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल के शरण में रहे? हे मेरे जीवनाधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपके प्रिय सेवा में निरंतर लगा रहे? तात्पर्य, इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को भगवान के दास का भी दास दासानुदास बनना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपीर भरतुर पद कमलय और दास दासानुदास। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु परंपरा से संबद्ध हो और भगवान के दास का भी दास हो। उसी के निर्देश में वह अपने तीनों धन अर्थात मन वाणी तथा शरीर को लगाए, गुरु के आदेशानुसार शरीर को शारीरिक कार्य में लगाए, मन कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे और अपनी वाणी को भगवान के यश के प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान की प्रेम भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। हे श्री भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण में रहे? हे मेरे जीवन के आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रिय सेवा में निरंतर लगा रहे? तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, वृत्रासुर की प्रार्थनाओं में से है। चार श्लोक इस श्रृंखला में भागवत में चतुश्लोकी बताया जाता है। एक चतुश्लोकी दूसरे स्कंद में है, ये भी दूसरा चतुश्लोकी है। चार श्लोक वृत्रासुर के द्वारा सुनाए गए इंद्र के समक्ष खड़े होकर वो भगवान का स्मरण करके, इन श्लोकों में उन्होंने भक्ति का सार तत्व दे दिया है। और इन श्लोकों को गौर से देखेंगे तो पता पड़ता है कि किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में और अन्य प्रार्थनाओं में जिस प्रकार का भाव प्रस्तुत किया है वही भाव इन श्लोकों के माध्यम से उभर कर आता है। तो कल हमने वर्णन किया कि देवतागण दधीचि ऋषि के पास गए हैं और दधीचि ऋषि उनको कह रहे हैं कि आप लोगों का प्रस्ताव बहुत ही श्लाघनीय है कि आप भगवान के मिशन में मेरी अस्थियों का प्रयोग करने वाले हो। तो ये पॉइंट पर हमने कल की कथा को विराम दिया था कि भगवान के मिशन में यदि आपको कार्यशील होने का अवसर मिलता है तो मनुष्य जीवन की सफलता है। तो दधीचि ऋषि इसके लिए अपना पूरा जीवन दान देने के लिए तैयार थे, हड्डियों को देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको पता पड़ा कि यदि भगवान श्री विष्णु का ये आदेश है और भगवान श्री विष्णु के किसी मिशन में किसी कार्य में मैं यदि कोई अंग बन सकता हूं तो इसमें मेरे जीवन की सफलता है। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है, अंततोगत्व केवल क्लेश ही देगा, किसी काम के नहीं आएगा, लेकिन जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक उस शरीर को दूसरों की सेवा में, समाज की सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए दशम स्कंद श्रीमद भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ ब्रज के नाना प्रकार के तरु लताओं को देखते हुए दर्शन करते हुए इन वृक्षों की स्तुति करते हुए कहते हैं कि ये जितने वृक्ष हैं कितने महान हैं। पश्यदेतान महाभागान परस्यैकांत जीवितान वात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयंतिन। पश्यदेतान महाभागान, ये जितने वृक्ष खड़े हैं ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, ये महाभाग हैं, महाभाग्यशाली महात्मा गण हैं। क्यों? परस्य एकांत जीवितान, क्योंकि अपनी निजी इंद्र तृप्ति के लिए जीते नहीं, दूसरों के हित के लिए जीते हैं। परस्य एकांत जीवितान अर्थात जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है कि दूसरों की सेवा, परोपकार। वात वर्षा तप हिमान, और नाना प्रकार के वर्षा और बाकी जो मौसम के आपातकालीन परिस्थितियों में ये खड़े रहकर सहन करते रहते हैं। सहन तो वारयन्ति न, स्वयं दुख सहन करते हैं दूसरों को सुख देने। जिस तरह अगरबत्ती जलता है तो स्वयं जलता है लेकिन जगत को सुगंधित करता है, उसी तरह यदि हम अपने इस शरीर को जो कि वास्तव में कुछ ही दिनों का मेहमान है किसी अन्य समाज की सेवा में, लोगों की सेवा में, भगवान के मिशन की सेवा में लगाएं तो इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं कार्य हो सकता है। तो महाप्रभु भी इस श्लोक को कोट करते हैं, एतावत जन्म साफल्यम देहि नाम इह देहिषु प्राणिरर्थैर धियावाचा श्रेय आचरणम सदा। ये मनुष्य जीवन की सफलता है, एतावत जन्म साफल्यम देहि नाम इह देश, यदि प्राण अर्थ धन धिया बुद्धि और वाणी को यदि हम भगवान की सेवा में लगा सकें इससे श्रेष्ठ और कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर कई सारे नवयुवक नौजवान लोग हैं, कुछ आप में से ब्रह्मचारी बनेंगे, कुछ लोग गृहस्थ बनेंगे, लेकिन किसी भी आश्रम में आप रहिए, प्रभुपाद के मिशन का उत्तरदायित्व आपको स्वीकार करना है। तो ये सबसे प्रमुख बात है। तो वही जो दधीचि ऋषि का मूड है उसको अपनाना है और स्वयं को, अपनी ऊर्जा को, अपनी बुद्धि को, अपनी शक्ति को, अपने बल को, अपनी आर्थिक संपत्ति को, अपनी यौवन की संपदा को भगवान के मिशन में लगाना है, ये बहुत आवश्यक है। इसको कहते हैं यहां पर प्राणेर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। इसलिए महाप्रभु ने कह दिया कि जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है उसका सबसे प्रमुख कर्तव्य क्या है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो यहां आप सभी को बहुत बढ़िया प्रशिक्षण मिल रहा है, तो समझना चाहिए कि यह बहुत ही दुर्लभ अवसर है। कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित करते हो जिसमें हजारों की संख्या में लोग बैठकर आराम से कथा सुनते हैं और कथा सुनकर प्रसाद खा के जाते हैं, और कौन से समाज सेवा की बात करते हो? समाज सेवा करना हो तो जाओ, गरीबों में भोजन बांटो, नंगों को कपड़ा दो, जो पीड़ित हैं उनको नाना प्रकार से मदद करो। समाज की सेवा ये होती है, नहीं कि आराम से बैठ गए पंखे के नीचे, प्रवचन वचन सुन लिया, उसमें भी सुनते सुनते सो गए और उसके बाद थोड़ा नाचा गाया खाया और चले गए, ये क्या सेवा है? ये समाज सेवा है? कौन से समाज की सेवा हो रही है? इससे क्या लाभ? आपके तथाकथित सत्संग कार्यक्रमों का वास्तविक मूल तत्व तो क्या है? समाज में कोई सार्थकता है क्या इसकी? बताइए, क्यों कर रहे हो आप लोग ये सब? अगर सेवा करनी है तो उठो प्रवचन से, जाओ और बाहर जितने गरीब लोग हैं उनको भोजन बांटो, जो प्रसाद बच गया वो बांट दो। तो कई बार इस तरह से आप लोग मिलते होंगे, कई लोग जो प्रश्न करते संशय करते हैं कि हम लोगों का जो पूरा मिशन है उसकी सार्थकता क्या है। तो मैं उदाहरण देता हूं कि यदि कोई मेडिकल कॉलेज में घुसे, प्रवेश करे, और मेडिकल कॉलेज का क्लासरूम में 150 लोग बैठकर सुन रहे लेक्चर फर्स्ट ईयर के, और हम वहां जाकर जोर से घोषणा करें, अरे 150 लोग नालायक बैठकर सुन रहे हो, पता है क्या ओपीडी में कितने पेशेंट मर रहे हैं, लंबी लाइन लगी है, उठो यहां से, भागो वहां पे, और ऐसा बिल्कुल उच्च स्वर में चिल्लाओ तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो उठ के भागेंगे ओपीडी की तरफ, लेकिन वहां खड़े पेशेंट लोग को मालूम पड़ेगा कि ये जो आ रहे हैं वो फर्स्ट ईयर के लोग हैं, तो उससे अधिक तेज रफ्तार से वो भागेंगे। अब बोलेगा अरे रुको यार, डॉक्टर आ रहे हैं। अरे डॉक्टर नहीं, जल्लाद है, यमदूत हैं, मार डालेंगे हमको। तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये अच्छे हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है उनको, एक दो सेमेस्टर का ज्ञान है। तो बोले एक दो सेमेस्टर के ज्ञान में सीधा परलोक भेज देंगे हमको, अभी तो बीमार हूं, इनका संग करूंगा तो मृत्यु को प्राप्त करूंगा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दवाई। तो इतने वर्ष तक वो लोग क्या करते हैं, बैठकर प्रशिक्षण लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, क्यों, जिससे वो समाज की सेवा कर सके, लोगों को मदद कर सके। तो जब तक बैठ के कोई श्रवण नहीं करता तब तक क्या सेवा करेगा, तब तक दूसरों की सहायता क्या करेगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है, और इसलिए मिशन में बहुत सारे लोग हमें चाहिए। क्रिश्चियन लोगों की विशेषता है कि हर क्रिश्चियन अपने आप को प्रीचर मानता है, ऐसा नहीं कि उनको वो ब्रह्मचारी सन्यासी ऐसे सब कुछ नहीं, उनका एक बार क्रिश्चियन हो गया, क्रॉस मिल गया तो बस एक क्रॉस ही काफी है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उनके पास लीला कितना, एक ही लीला है, क्राइस्ट आए चले गए। और प्रभुपाद ने कहा एक लीला को लेकर देखो क्या वो लोग ने दुनिया भर में प्रचार किया है, तो सोचो उनको लेक्चर में बैठना कितना कठिन होता होगा, उनके लेक्चर में क्या टॉपिक है, एक ही टॉपिक है, और अधिक इतना कुछ नहीं है, भागवत है, सीसी है, चैतन्य भागवत है, ये लीला है, वो लीला है, उसमें भी हम लोग हरे कृष्ण में बोर हो जाते हैं इतना कथा होने पर भी। और वो लोग बस एक है, ऊपर से क्राइस्ट आए कुछ दिन रहे और फिर उनको मार दिया चले गए, वही हर हफ्ते हर संडे सुनते हैं, वही उसमें सुन के रोते हैं, वही सुन के प्रचार भी करते हैं, और कुछ प्रसाद भी नहीं बढ़ता उधर। फिर भी देखो कैसे आग की रफ्तार से पूरे दुनिया में उन्होंने प्रचार फैलाया है, मानना पड़ेगा। और हमारे पास तो एक से एक कथा है, और कथा में भी अलग अलग टाइप के रस हैं, थोड़ा कम रसिक, कोई अधिक रसिक, कोई बिल्कुल ही रसिक, रसमय है ना, और बहुत प्रकार का अपना वैरायटी है। कोई कहता है मेरे को नरसिंह देव इतने ठीक नहीं लगते, थोड़ा ज्यादा एंग्री है वो, मेरे को थोड़ा रामचंद्र जी ठीक लगते, कूल है वो। कोई कहता है मेरे को कृष्ण अच्छे लगते हैं, वो बिल्कुल फ्लैम्बोयंट है। तो ऐसे अपने पास कितना वैरायटी है, जिसको जैसा पर्सनैलिटी के हिसाब से मैचिंग करना है वो अवतार से जुड़ जाए, इतना वैरायटी है कथा में, इतना वैरायटी है प्रसाद में, हर प्रकार से वैरायटी है। हरे कृष्ण धुन गाने जाओ तो 50 वैरायटी है ट्यून के, इतना सब वैरायटी रखने पर भी मन कहता है कि यार वही वही चल रहा है यहां पर, बोर हो रहे हैं, फिर जा रहा है तो मंदिर बोर होने। तो वास्तव में तो पूरा क्रिश्चियन धर्म फैला है, उनके पास बहुत सीमित शिक्षा है, बहुत सीमित कथा है, लेकिन फिर भी उनके पास असीमित उत्साह है, और क्या प्रचार किया है उन्होंने देखकर दंग रह जाएंगे लोग। और हमारे पास सब कुछ है, इतना प्रचुर मात्रा में है, तो हम तो 50 गुना अधिक काम कर सकते हैं। तो हमारे गिरिराज महाराज जब ज्वाइन हो गए तो उनके माता पिता बहुत दुखी थे, और साइकेट्रिस्ट को बुला दिया। साइकेट्रिस्ट गिरिराज महाराज को बिठा के पूछने लगी क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे लाइफ का, तो बोले एक ही प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो बोले यार ये कौन सा उत्तर है, बोले बचपन में माता पिता ने तुझे पीटा था क्या? तो बोले नहीं, हमारे माता पिता तो पितामह से जगत है, माता धाता पितामह वो तो सब कृष्ण ही है, सबके माता पिता तुम्हारे भी वही है। बोल दे, हर प्रश्न का उत्तर गीता के श्लोक से। आधे घंटे में वो साइकेट्रिस्ट भागी भागी बाहर निकली, उनके माता पिता को कहा आपके लड़के के साथ आधा घंटा और बैठूंगी, मैं हरे कृष्णा बन जाऊंगी, आपके बेटे को संभालो, उसको कोई नहीं संभाल सकता, इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। तो प्रभुपाद बहुत जोर जोर से ताली बजाने लगे, बोला दिस इज परफेक्ट, क्या एनालिसिस दिया, परमानेंटली इन्फेक्टेड। एक बार हरे कृष्ण के संपर्क में आ गया तो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छूटेगा। तो एक बार हरे कृष्ण में आ गए तो समझ जाओ कि जीवन में कभी इंद्र तृप्ति भोग नहीं कर सकते। यहां पर कोई पहली बार आया तो अभी सोच लो आगे बैठना है कि नहीं। आगे प्रवचन में जो कुछ सुनोगे उसके आधार पर भविष्य में कभी इंद्र तृप्ति इस तरह से नहीं भोग सकते, क्योंकि बहुत ज्ञान भर जाएगा। इतना क्लास सुना है, इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि इंद्र तृप्ति करने भी जाओ तो अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा। याद आया क्या बोला प्रसंग, वो सुना था क्या लेक्चर में, याद है कि नहीं? बोले यार इंद्र तृप्ति तो करने दो। नहीं, वो मन आपको सताएगा। अभी भले आपको लग रहा है कि मैं क्लास में सो रहा हूं, लेकिन सब जा रहा है अंदर, रिकॉर्ड हो रहा है। और उसकी परीक्षा तब होगी जब हरे कृष्ण छोड़ के कोई इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करेगा, उसका अनुभव रहेगा मजा नहीं आ रहा है, पहले के समान मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब ज्ञान है, अब कुछ नहीं कर सकते, बहुत देर हो चुकी है। इसलिए एक ही चॉइस है, हरे कृष्ण में सीरियस हो जाओ। इसलिए मन में जो थोड़ी बहुत संकल्पना चल भी रही है कि कहीं तो मैं जल्दी तो नहीं कर दिया, तो उस बात को निकाल देना चाहिए। तो इसलिए एक बॉन महाराज करके महाराज के मित्र हैं, स्पेन में है वो अभी, वैसे वो साउथ अमेरिका के थे। तो उनके फैमिली में उनका परिवार इतना विशाल था कि 20 उनके भाई बहन थे, इतना बड़ा परिवार। और वो लोग बिल्कुल घर के आंगन में बैठ के सब भोजन लेते थे, इतने लोग पंगत में बैठते थे। और बाहर का आंगन का दरवाजा खोल के रखते थे, तो बाहर आते आते लोग अंदर घुस जाते थे, उनको लगता था होटल है, आके बैठ जाते थे। तो उनका बोलना पड़ता था नहीं, एक ही फैमिली है, आपके लिए नहीं, आगे जाओ। तो इतना बड़ा परिवार है, उसमें से ये जब फुल टाइम बने तो मां रोने लगी। तो बोले क्यों रो रही हो? अरे तेरी शादी नहीं होगी तो फिर पोता नहीं होगा तो हम लोग वंचित हो जाएंगे। तो बोले अरे बाप रे, दूसरे 19 बैठे ना, क्या प्रॉब्लम क्या है, जितना चाहिए आपको देंगे। बोले लेकिन आपसे नहीं मिलेगा हमको। तो बोले इसकी कोई सीमा ही नहीं है। और अपने यूथ फेस्टिवल में रसराज प्रभु बता रहे थे कि एक पिताजी आके झगड़ा करने लगे मंदिर में, ये कोई उम्र है क्या मंदिर में आने की, मेरे बेटा इतना जवान है, जब मेरी उम्र का होगा तब उसे मंदिर में आना चाहिए। तो उसको बोले ठीक है, बच्चे को छोड़ देते, आप आ जाओ अंदर। तो बोले जरा घर वाली को पूछ के बताता हूं। तो गए घर पर, अगले दिन आके बोले ऐसा है कि बेटे को रहने दो, मुझे छोड़ दो, ये हरे कृष्ण वाले बड़े खतरनाक है, बेटा तो दूर बाप को भी नहीं छोड़ते। निर्लज हैं आप लोग। तो इस तरह से ये मिशन में लगना बहुत आवश्यक है। एकांत व्यक्ति बहुत कुछ प्रयास कर सकता है, हाथ पैर मार सकता है। कई बार हमें मन में लगता है कि ये हरे कृष्ण में बहुत समस्या हो रही है, डिवोटी लोग ऐसे हैं, अथॉरिटी मेरे ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इतना नियम है, ये है वो, पहले जैसा भाव नहीं आ रहा मेरा, पहले मैं भाव के साथ भक्ति करता था, अभी सब लोग बहुत भाव खाते हैं, इसके लिए मैं छोड़कर जाऊंगा और अकेला भक्ति करूंगा, पूरे दुनिया में आग लगा दूंगा, हरे कृष्ण की ज्वाला फैला दूंगा, दिखा दूंगा मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो अकेला प्रयास करोगे तो लगभग असंभव है। जैसे बंदूक का जो गोली है, अगर केवल गोली को मैं हाथ में लूं और गोली को हाथ में लेके बोलूंगा हैंड्स अप, हाथ उठा, गोली मार दूंगा, बोलेगा मार। देखते हैं क्या मारता है। अगर हाथ में गोली लेकर अगर कोई कहे तो बोलेंगे हाँ मार ले, चलो कोई बात नहीं, आई एम नॉट दिस बॉडी। क्योंकि पता है क्या होगा, अधिक से अधिक हाथ से मार रहा है वो, वही गोली को बंदूक में लगाओ और दिखाओ तो फिर आदमी थोड़ा घबराता है, पता है कि जो चलेगी तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। तो उसी तरह अकेला व्यक्ति जो हरिनाम है, हरिकथा है, वो गोली की तरह है। तो हरिनाम और हरिकथा की गोली उतना प्रभाव नहीं करेगी जब अकेला व्यक्ति हाथ पैर मारेगा तो, लेकिन इस्कॉन जो है बंदूक की तरह है, तो हरिकथा और हरिकीर्तन को इस्कॉन के बंदूक के अंदर डालकर जब चलाओ ढूस, तब कुछ प्रभाव पड़ता है। कोई भी संस्था जो सुनियोजित ढंग से चले उसके माध्यम से प्रभाव अधिक पड़ता है। इसलिए ऐसे मिशन में लोग जुड़ जाने चाहिए जिससे कि दुनिया में हम प्रभाव कर सकें। और यहां पर कितने ही नौजवान लोग पूना के मंदिर से जुड़ रहे हैं, तो आप किसी भी आश्रम में रहें लेकिन इस मिशन को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व आपको लेना है। यहां पर दधीचि ऋषि तो इंद्रदेव को अपने भोग हेतु सत्ता प्रदान करने के लिए भगवान श्री विष्णु के आदेशानुसार अपनी अस्थियों को पूरी तरह से प्रविलित करने के लिए तैयार हो गए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़कर बद्ध जीवों को भगवत धाम ले जाने का उत्तरदायित्व के लिए कोई अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए क्यों तैयार नहीं होगा, और विशेष रूप से कोई व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया हो। भारत में नाना प्रकार से भक्ति करना कोई कठिन कार्य नहीं है, जैसे उस दिन हमने प्रवचन में बताया, हर प्रकार की परिस्थिति यहां भारत में अनुकूल है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि यहां पर मिशन में वो भाग लें। और आप लोगों का सौभाग्य है, यहां पर राधेश्याम प्रभु बहुत अच्छी तरह से आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह यहां योजना बना रहे हैं। कल मैराथन के भी जो अनाउंसमेंट्स मैंने सुने, बहुत अच्छा लगा कि एक एक व्यक्ति को 100-100 गीता का कोटा दे दिया, कितना इतना बांटो, तो अच्छा है। इस तरह से अगर पूरा एक सेना आगे बढ़ेगा तो फिर मिशन आगे चल सकता है। तो ये अपने दधीचि ऋषि का साक्षात्कार है। भवानंद महाराज उस समय प्रभुपाद के पास थे, तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि तुम्हारा नाम भवानंद है, उसका अर्थ क्या मालूम है क्या? तो बोले हाँ, जो भगवान के भाव में विभोर हो जाए और उसमें आनंद ले, वो भवानंद। प्रभुपाद बोले नहीं, वो भाव आनंद हो जाता है, तुम्हारा नाम है भव आनंद। तो बोले इसका अर्थ क्या है फिर? तो प्रभुपाद ने कहा जो भव अर्थात भौतिक जगत में आनंद ले। बोले बाप रे, ये क्या है? ये आध्यात्मिक नाम है कि भौतिक नाम है? ये कैसा नाम दे दिया? तो प्रभुपाद ने कहा देखो, आध्यात्मिक जगत में भगवत धाम में सभी जीव केवल आनंद लेते हैं भगवान की सेवा में, वहां किसी को प्रचार नहीं किया जा सकता, केवल भौतिक जगत में ही प्रचार हो सकता है। तो भौतिक जगत या भव, यहां पर नाना लोकों में जितने जीव संतप्त हैं उनको भगवत ज्ञान देकर उनके जीवन में आनंद लाना, उसको कहते हैं भवानंद। अर्थात जो प्रचार में आनंद ले, जो भौतिक जगत भव सागर में बद्ध जीवों को प्रचार करते हुए उस प्रचार की लीला में आनंद ले। तो इसलिए समझना चाहिए कि ये भौतिक जगत में ही प्रचार संभव है। और अभी आप लोग, हम लोग कुछ साल भक्ति करेंगे, हरिनाम जपेंगे और महाप्रभु की कृपा से हम लोग सब भगवत धाम चले जाएंगे। अगले 20-30-40 साल में जितने लोग यहां बैठे हैं सब भगवत धाम जाएंगे। तो एक बार भगवत धाम चले गए तो कितने समय के लिए जाएंगे? सनातन काल के लिए जाएंगे, अर्थात फॉर रेस्ट ऑफ इटर्निटी विल बी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर भविष्य के सनातन काल के लिए हम लोग भगवत धाम जाने वाले हैं तो इस भौतिक जगत के कुछ ही वर्ष रह गए हैं और कुछ कुछ लीला केवल भौतिक जगत में ही संभव है। कुछ कुछ जो एडवांटेज है या जो भी है, केवल भौतिक जगत में आप उसका आनंद लूट सकते हो। तो इसलिए भौतिक जगत में जो प्रचार का आनंद है उसके लिए बहुत कुछ वर्ष ही रह गए हैं, उन वर्षों में इस प्रचार का आनंद ले लो, नहीं तो भगवत धाम जाने के बाद मिस करोगे, है कि नहीं? उसी तरह ये समस्याएं, क्लेश, चिंता वगैरह केवल भौतिक जगत में ही है, भगवत धाम जाने के बाद वो सब नहीं मिलेगा। जो लड़ाई झगड़े ये वो हैं, वो केवल भौतिक जगत में है। तो कभी होते हैं तो विचलित नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए यह लास्ट चांस है। एक बार आध्यात्मिक जगत चला गया, भगवत धाम चला गया, फिर ये सब मिलेगा नहीं। तो वहां जाने के बाद कुछ समय के बाद लगना नहीं चाहिए, अरे वो पुणे में मजा आता था यार, आजकल कोई झगड़ा ही नहीं करता, सब लोग स्तुति करते रहते हैं। तो यहां पर जो कुछ भी क्लेश हो या समस्या भी आवे तो सोचना चाहिए कि ये बस अंतिम कुछ चांस है इसका अनुभव करने का। एक बार यहां से निकल गए फिर चिंता मुक्त जीवन सनातन काल के लिए, और उसमें भी भगवान भगवत धाम में रहकर पूजा स्वीकार कर करके कभी उनको भी वैरायटी चाहिए तो वो भौतिक जगत में आ जाते हैं, लेकिन वो भगवान है इसलिए आ सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं आ सकते ऐसे। इसलिए भौतिक जगत से कभी इतना त्रस्त न हो जाएं, सोचना चाहिए कि जितना समय है उस समय भगवान की यहां पर इस स्थान में इस जगत पे सेवा करने का अंतिम अवसर है, और पूरी तरह सेवा करके फिर हम भगवत धाम जाएंगे। तो ये दधीचि ऋषि के साक्षात्कार हैं, और अब दधीचि ऋषि अपने शरीर को त्यागते हैं और उनके शरीर से अस्थियां तैयार होती हैं, उन शरीर के अस्थियों से वज्र तैयार होता है, और इंद्र उस वज्र को लेकर हाथ में वृत्रासुर के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो वृत्रासुर वापस उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, वृत्रासुर के आक्रमण से सारे देवतागण घबराकर भागने लगते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, और ऐसी अवस्था में वृत्रासुर इंद्र के सामने आ जाते हैं, और इंद्र के सामने आकर वो इंद्र को बुरा भला कहने लगते हैं, इंद्र की आलोचना करने लगते हैं कि इंद्र तू कितना निर्मम निर्दयी निर्लज मूर्ख है, मैंने जीवन में कई लोगों का दर्शन किया लेकिन तुझ जैसा नीच मैंने नहीं देखा, क्यों? क्योंकि अपने ही गुरु की निर्मम रूप से जो हत्या करे वो भी कापट्य का आश्रय लेकर, वो कितना अधम प्राणी है, कठोर से कठोर शब्दों में ऐसे नीच की निंदा होनी चाहिए, लेकिन तू यहां ऐरावत पर बैठकर बड़ा राजा बनता फिर रहा है। अरे मेरे भाई ने किसी प्रकार से कोई पाप नहीं किया था, ऐसा निष्पाप निष्कलंक जीवन जीने पर भी तुमने निर्मम रूप से बिना किसी आभास के उसकी हत्या कर दी, क्यों किया ऐसे? तुम राजा बनते हो लेकिन किस तरह का आचरण है तुम्हारा, किस तरह का चरित्र है? अरे तुम्हारा शरीर तो इतना निकृष्ट है कि मृत्यु के पश्चात अग्नि देव भी आपके इस थर्ड क्लास शरीर को स्पर्श करने से इनकार कर देगा, और फिर चील गिद्ध और पशु पक्षी आकर उसकी बोटी बोटियां काट कर खा जाएंगे। इस तरह से वो इंद्रदेव को कठोर शब्दों में निंदा कर रहा था। तो इंद्रदेव की निंदा हुई, लेकिन इंद्रदेव बेचारे क्या करे, चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। तो देखिए भौतिक जगत का लक्षण है कि चाहे इंद्र के पद पे भी हो गालियां सुननी पड़ती, कोई नहीं कह सकता कि मैं इतना ऊंचा हो गया हूं कि कोई मुझे बुरा भला नहीं कह सकता। इसलिए भगवान स्वयं भी इस जगत में प्रकट होते हैं तो असुरों के मुंह से दो चार बुरा भला बात सुन के ही जाते हैं, और इसलिए भगवान कहते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख जा आगमा अपायनो अनित्य, दुख क्लेश आएंगे और जाएंगे, ये सब परिस्थितियां अनित्य होती हैं, क्षणभंगुर हैं, स्थायी नहीं है, इसलिए जीव को इससे विचलित नहीं होना चाहिए। सबसे आशाजनक शब्द इस श्लोक में है आगमा अपायनो अनित्य, अर्थात ये परिस्थिति अनित्य है, दीर्घ काल तक नहीं रहेगी। तो इसलिए यहां पर इंद्र देवों की कठोर शब्दों में वो निंदा कर रहे हैं और बेचारे वो सुन रहे इंद्र खड़े होकर, तांति तीक्ष्णस्व भारत। तो इसलिए हमें भी विविध परिस्थितियों में सहन करना सीखना है, ये सहनशीलता बहुत आवश्यक है। तो यहां पर अब वृत्रासुर इंद्रदेव को बुरा भला कहने के पश्चात आक्रमण करते हैं, तो इंद्रदेव भी तैयार हैं। तो जब वृत्रासुर आक्रमण करते हैं, इंद्र के बाएं हाथ में वो वज्र है और दाएं हाथ में गदा है, तो इंद्रदेव अपने दाएं हाथ का जो गदा लेकर फेंकते हैं वृत्रासुर की ओर, क्योंकि उनको लगता है कि जो वज्र है वो तो मेरा बिल्कुल ट्रंप कार्ड है, अंत में चलाऊंगा, पहले बाकी सब ट्राई कर लेता हूं। तो जब गदा फेंकते हैं तो वृत्रासुर अपनी बाएं हाथ से उस गधे को पकड़ लेते हैं और गदा को हाथ में लेकर सीधा ऐरावत के सर पर जोर से मारते हैं। वो बेचारा ऐरावत घबरा जाता है, क्या हो रहा है, और ऐरावत धड़ाम से नीचे गिरता है और इंद्र भी नीचे गिरते हैं, लेकिन भगवान की दया से ऐरावत इंद्र पे नहीं गिरता, इंद्र दूर जाके गिरते हैं, नहीं तो लीला वहीं समाप्त हो जाती थी। और वृत्रासुर के श्लोक नहीं सुनते थे। और ऐरावत के साथ किसी ने जीवन भर इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया था कि उसको ही नीचे पटक दे, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो ऐरावत भी बार बार घूर घूर के देख रहा था, कौन है यार ये जो इस तरह से अचानक धावा बोल दिया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और वो भी इंद्र को बार बार देख रहा है कि ये तो इसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा अभी मुझे। तो इस तरह से ऐरावत भी परेशान, इंद्र भी परेशान, और जब अचानक झटका लगता है तो शौक से आदमी घबरा जाता है। तो इंद्रदेव के हाथ में वो वज्र था, लेकिन ऐसे झटके से वृत्रासुर ने आक्रमण किया था कि इंद्रदेव का पूरा मन घबरा गया और वो बिल्कुल विचार करने लगा कि ये व्यक्ति मार देगा मुझे, वृत्रासुर मुझे मार देगा, घबरा गया। हाथ में वज्र है, लेकिन हाथ में वज्र होने पर भी यदि मन घबरा गया तो फिर क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो वृत्रासुर उनको कहने लगता है, वृत्रासुर कहने लगते हैं, अथो हरे में कुलशेन वीर हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह, कि हे इंद्र, अथो हरे में कुलशेन वीर, आप देवताओं के स्वामी हो, हे वीर, हर्ता प्रमथ्यैव, मेरी हत्या करो आप। वृत्रासुर इंद्र को कह रहे हैं, हत्या करो मेरी। कहते क्यों, तत्रांड्रण भूत बलिं विधाय मनस्विनां पादरज प्रपत्स्ये। तत्रांड्रण भूत बलिं, मेरी इच्छा है कि मैं अपना शरीर केवल परोपकार के लिए दे दूं, अन्य जीवों की सेवा हेतु, और मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है, मनस्विनां पादरज प्रपत्स्ये, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि मेरे मस्तक पर धारण कर लूं, वही मेरे मस्तक का आभूषण बने और उनके चरण कमलों की धूलि की शक्ति से मैं भगवत धाम में प्रवेश करूं। इस तरह वृत्रासुर की कामना है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, नो वन हैज एवर गॉन बैक होम बैक टू गॉडहेड विदाउट बीइंग ब्लेस्ड एंड फेवर्ड बाय अ वैष्णव। जब तक वैष्णव की कृपा नहीं होती तब तक भगवत धाम में नहीं प्रवेश मिल सकता। तो भी क्योंकि अब वृत्रासुर अपने भगवत धाम में प्रवेश की बातें आरंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि वैष्णव की कृपा अनिवार्य है। मनस्विनाम पादरज प्रपत्स्ये, हे इंद्र, कृपा करके प्रार्थना करो कि महान वैष्णव के चरण का रज मुझे प्राप्त हो जाए। विना महत पादरजोभिषेकम। तो फिर वो कह रहे हैं आगे इंद्र को कि देखो इंद्र, अभी समस्या क्या है, हम लोग के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, कि तुमको इंद्र का पद चाहिए, स्वर्ग लोक के राजा का पद चाहिए, और मुझे भगवत धाम जाना है, तो इसके लिए सबसे उपाय अच्छा क्या है। सुरेश कस्मा नहिनोषि वज्रम पुरः स्थिते वैरिणिमयि अमोघम, मा संशयित्वा न गदेव वज्रम स्यान् निश्वल कृपणई अर्थ याचना। सुरेश कस्मान, अरे सुरेश अर्थात देवताओं के स्वामी, कस्मान न हिनोषि वज्रम, अपना वज्र क्यों नहीं चला रहे हो, मेरे सामने अपना वज्र लेकर मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो, जब हाथ में वज्र है चलाने के लिए दिया है, चलाओ उसको। सुरेश कस्मान न हिनोषि वज्रम पुरः स्थिते वैरिणी मई अमोघम, अरे पुरः स्थिते, आपके सामने आपका वैरी, आपका शत्रु खड़ा है, मैं आपका शत्रु हूं, और अमोघम, आपके हाथ में ये अमोघ अस्त्र है, जब अमोघ अस्त्र धारण करके आप खड़े हो तो देखते क्या हो, तो अच्छा, क्योंकि आपने सर्वप्रथम गदा चलाई और वो गदा का आक्रमण फेल हो गया, इसलिए लगता है मन में संशय आ गया कि ये गदा को तो हाथ से पकड़ लिया और ये मैं वज्र फेंक दिया उसको भी पकड़ लिया तो क्या होगा, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो गदा से तो ऐरावत को मारा, इसको तो पता नहीं उठाकर मेरे सर पे पटक देंगे, तो हो सकता है मेरी हत्या हो जाए, इसलिए मन में संशय होगा। तो कह रहे हैं मां संशयित्वा न गदेव वज्रम, संशय मत करो, क्योंकि पहले जो आपने गदा चलाई वो आपका अपना अस्त्र था, लेकिन ये जो अस्त्र आप चलाओगे वज्र, वो आपका अस्त्र नहीं है, भगवान नारायण का अस्त्र है, और भगवान नारायण के अस्त्र में अमोघ बल है, अच्युत है, वो उसको चला वो कभी फेल नहीं होगा। आप भले फेल हो जाओ लेकिन नारायण फेल नहीं होंगे, इसलिए उनका मिशन और उनके आदेशानुसार बनाया गया कोई भी अस्त्र अवश्य सफल होगा। इस तरह से वृत्रासुर के मन में पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास है, वो कह रहे हैं लॉर्ड विष्णुज ऑर्डर नेवर फेल्स। वज्र कैसे बना? विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु का आदेश था। तो इसलिए आप संशय मत करो, पहला आक्रमण फेल हुआ उस पर मत जाओ, अभी जो आक्रमण होगा वो अवश्य सफल होगा, क्योंकि भगवान विष्णु के आदेशानुसार बनाए गए अस्त्र के आधार पर वो होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि यदि भगवान से संबंधित नारायण अस्त्र को आप चलाओगे, मेरी हत्या होगी, मैं भगवत धाम जाऊंगा, आप विजयी हो जाओगे, स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, आप भी खुश मैं भी खुश, दोनों प्रसन्न। तो प्रभुपाद उसका तात्पर्य देते हैं, एनी एक्टिविटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज बेनिफिशियल फॉर ऑल। कृष्ण से संबंधित कोई भी कार्य सबको लाभ करता है। तो यहां पर इंद्र को कह रहे हैं हमारे वृत्रासुर कि देखो ये सबसे अच्छा बार्गेन है, विन विन सिचुएशन, आप चलाओ आप जीतोगे, मैं मर जाऊंगा भगवत धाम जाऊंगा, आप भी खुश हम भी खुश, देखते क्या हो, चलाओ। और इंद्र तब भी भ्रमित देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा कि क्या सुन रहा है वो, कि सामने उसका वैरी है और वो कह रहा है चलाओ मुझे, मारो मुझे, अस्त्र आपके हाथ में, देखते हो क्या हो, चलाओ उसको। तो वैसे हरे कृष्ण आंदोलन में आते साथ हमारे हाथ में अमोघ अस्त्र आ गया है, हरिनाम। तो हाथ में हम लोग माला लेके घूम रहे हैं, तो वो भी भगवान श्री विष्णु के आदेशानुसार ही चल रहा है, भगवान विष्णु से अभिन्न है कि नहीं। इंद्र के हाथ में क्या था? वज्र अस्त्र, और वो वज्र भगवान श्री विष्णु से अभिन्न था, लेकिन इंद्र के हाथ में होते हुए भी इंद्र उसको चला नहीं पा रहे, इंद्र घबराए हुए अवस्था में है, डर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मन उनका साथ नहीं दे रहा। उसी तरह हाथ में हरिनाम का अस्त्र और माला होते हुए भी कई बार हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। इंद्र के मन में संशय क्यों हुआ? क्योंकि उनके पूर्व के कुछ प्रयास विफल हुए। उसी तरह माला जपते जपते हो सकता है हम लोग कभी कुछ फिसल जाएं, या कोई भक्ति के जीवन में कुछ समस्या आ जाए, तो हमारे मन में भी उस अस्त्र से संबंधित कई संशय उत्पन्न हो जाते हैं कि अस्त्र चलेगा कि नहीं, ये माला तो मैं रट रहा हूं, जप रहा हूं, प्रतिदिन मैं इतना 16 माला करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी भौतिक इच्छा तत्क्षण दूर नहीं होती, क्या बात है, इतना समय क्यों लग रहा है, लगता है ये पूरी तरह काम नहीं करता, बहुत स्लो एक्टिंग है। जब नया नया आया था तो डिवोटी लोग बोले थे कि चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, सब ठीक हो जाएगा, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा, 5 साल हो गया कुछ ठीक नहीं हुआ अभी तक, कब तक चलेगी गाड़ी। तो इस तरह मन में संशय उत्पन्न होता है। तो वास्तव में ये कोई एक दो वर्ष का प्रयास नहीं है, वर्षों वर्षों का प्रयास है, और अनर्थ निवृत्ति में बहुत समय लगता है। तो आरंभ में मैं प्रचार करते समय हम लोग कह देते हैं नाम जपो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रचार करने वाले को भी मालूम है सब ठीक नहीं होगा, इतना जल्दी समय लगेगा, है कि नहीं, समय लगेगा। लेकिन कितना समय लगेगा? अरे सनातन काल से भौतिक जगत में घूम रहे हैं उसकी तुलना में अधिक समय नहीं लगेगा, कुछ वर्ष लगेंगे। इसलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्तों के संग में हम एक दूसरे का ढाढ़स बंधाते हैं, श्रद्धा होती है। तो जब मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत समस्या चल रही है तो दूसरे भक्त से बात करो, दूसरा भक्त अपना समस्या सुनाएगा तो उसको सुन के आपको लगेगा मेरा ही ठीक है, भगवान बहुत कृपालु हैं। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। चार पांच लोगों की बातें सुन के आपको लगेगा कि मेरे कोटा में जो दिया बहुत अच्छा दिया, मैं दूसरे के साथ कर्म एक्सचेंज नहीं करना चाहता। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस अनर्थ निवृत्ति के समय दीर्घ काल तक हमको भक्तों के संग में साहस बनने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो यहां पर भगवान श्री विष्णु के आदेशानुसार बनाया गया यह अस्त्र और इंद्र उसको चलाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घबराए हुए अवस्था में है। तो ये महामंत्र है, बहुत शक्तिशाली है और कार्य भी करता है, लेकिन मंत्र के जपते जपते कभी कभी हमारा संशय उठता है, और यदि उस संशय को पालते रहोगे तो कुछ समय के पश्चात महामंत्र के जप से श्रद्धा भी उठ जाएगी। इसलिए भक्तों के संग में रहकर आपको ये महामंत्र के विषय में श्रवण करना है, ध्यान देना है। तो कई बार जो श्रील प्रभुपाद जी उस समय प्रचार करते थे, तो प्रभुपाद ने एक बार प्रश्न रखा कि 16 माला करने का अर्थ क्या होता है। प्रभुपाद से पूछा किसी ने, तो प्रभुपाद ने कहा 16 माला करने का अर्थ है कि 16 माला करने के बाद आपके मन में विचार आना चाहिए कि केवल 16 माला, केवल 16 माला नहीं, मुझे 160 माला करना चाहिए, केवल 160 नहीं, मुझे 1600 माला करना चाहिए, केवल 16 माला क्यों? ऐसा प्रश्न आप लोगों में कितने लोगों के मन में आता है, केवल 16 माला मन में आता है, क्यों 16 माला, 16 क्यों? और खासकर कई बार सुबह का जप रह जाता है और दिन भर भी नहीं टाइम मिलता और माला बच जाता रात को, और तब तो जो तपस्या होती है पूछो मत। रात को कोई जगह खोज कर पहले तो अपना बिस्तर लगा देते हैं, फिर बिस्तर पे बैठकर फिर माला कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, ध्यान है कि वो नीचे जा रहा है कि नहीं, उस पर ज्यादा ध्यान है। तो इस तरह के जो माला करते हैं उससे बहुत मन में वेदना होती है, और कई बार रात रात को 11-11 बजे तक, और कभी कभी 12 के आगे निकल जाता है और आदमी भूल जाता है कल का कर रहा हूं कि अगले दिन का कर रहा हूं, और लगता है दोनों दिन का थोड़ा थोड़ा करके रख दूं। तो फिर इस तरह से कई लोग फिर अपना हिसाब रखते हैं डायरी में, पेंडिंग माला का डायरी रखते हैं 4, 8, 6, 5, 3, 2, 8, 9, बोले क्या है ये, बोले रिकॉर्ड है पिछले महीने का, कितना रह गया माला अलग अलग दिन, जैसे धोबी का अकाउंट रखते वैसा रखते लोग। तो इस तरह अगर माला करते रहें तो फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र बहुत बड़ी तपस्या हो जाती है, और मन में गुस्सा आता है कि ये मूवमेंट में आया कौन, कैसे आ गया मैं, कौन लेके आया मेरे को, तो मन में कोई संतोष नहीं आता, आनंद नहीं आता। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जब कड़क रूप से साधना करोगे तब जाकर कुछ आपको टेस्ट मिलेगा, और जितने ढीले रहेंगे उतना आपको लगेगा कि बहुत तपस्या है, बहुत गड़बड़ है, बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए ये 16 माला जो करना है वो ध्यानपूर्वक करना है। ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तो प्रत्येक दिन एक तपस्या बन जाएगी, माला के नाम से ही व्यक्ति घबरा जाएगा, वो माला नहीं एक फांसी का फंदा लगेगा, अरे बाप रे फिर से लगना है इसमें। तो ये बहुत बहुत आवश्यक है कि साधना पे हम लोग ध्यान दें, और यहाँ पे आपके काउंसलर सिस्टम और ये सब सिस्टम में साधना कार्ड और ये सब जो सिस्टम बनाया गया है वो बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम अपने साधना के ऊपर ध्यान दे सकें और उसको अच्छी तरह से कर सके, अन्यथा उस अस्त्र पर ही संशय उठने लगता है कि अस्त्र क्यों है, क्या है, कैसे है। जैसे इंद्र के मन में अब संशय आ रहा है, अमोक अस्त्र है कि क्या अस्त्र है ये। तो आगे अब वो कहते हैं वृत्रासुर, अहम समाधाय मनो यथाहन संकर्षण चरणारविंदे त्वद्वज्रम हो लुलित ग्राम्य पाश गति मुनेर्यामी अपविद्ध लोक। अब वो कह रहे हैं कि हे भगवान, जब मेरी मृत्यु होगी और इंद्र मुझ पर अस्त्र चलाएगा, तब उस समय मैं केवल आपके चरण कमलों का ध्यान लगाकर आपके धाम में प्रवेश करना चाहता हूं। इस तरह से वृत्रासुर कामना कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू थिंक ऑफ कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, ये उनकी इच्छा है। और ये नाम है असुर, वृत्रासुर, लेकिन देखो भावना क्या है, शुद्ध भक्ति की भावना है। तो ये सब कहने के बाद फिर अंत में ये श्लोक कहते हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदास भवितास्मि भूय, कि मेरी इच्छा है कि मैं दासों का दास बनूं। और इस तरह मनस्मरेत, मन में वचन के माध्यम से और शरीर के माध्यम से आपके और आपके भक्तों की सेवा करूं। तो इस तरह से वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं, और उनकी प्रार्थनाएं जब समाप्त होती हैं तो प्रार्थनाओं के अंत में फिर वृत्रासुर भगवान से कहते हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेशु सख्यम संसार चक्रे भ्रमताम स्वकर्म भी, यदि मैं इस भौतिक जगत में भ्रमण करूं तो मेरी एक ही इच्छा है कि मैं मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम आपके भक्तों के संग में रहूं, मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो, ये मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है। आई वॉन्ट टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो इस तरह सर्वश्रेष्ठ प्रार्थनाएं कर रहे हैं वृत्रासुर, और जब इनकी प्रार्थनाएं समाप्त होती हैं तब इंद्र को फिर कुछ साहस आता है, लेकिन फिर भी वो वज्र चलाने के लिए तैयार नहीं। तो वृत्रासुर विचार करते, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में जो त्रिशूल है उसको ही मैं चला देता हूं। तो वृत्रासुर अपने हाथ में त्रिशूल लेते हैं और उठाकर फेंकते हैं इंद्र की ओर। जब त्रिशूल आता है तो इंद्र अपने हाथ में जो वज्र है उसे त्रिशूल को काटते हैं। फिर साहस आता है तो फिर अपने हाथ में वज्र को लेकर वो वृत्रासुर के एक हाथ को काट देते हैं। तो वृत्रासुर का एक हाथ कट जाता है, लेकिन फिर भी वृत्रासुर हार नहीं मानते। दूसरे हाथ में वो गदा लेते हैं वृत्रासुर, और सीधा इंद्र के पास जाकर जोर से दे मारते हैं, और फिर इंद्र जाकर दूर गिरता है, और उसके हाथ में जो वज्र है वो भी अब दूर जाके गिर जाता है। तो पहली बार तो आपातकालीन परिस्थिति आई थी, लेकिन हाथ में वज्र थी, अब ये वज्र ही दूर जाके पटक जाता है। अब इंद्र फिर डिप्रेशन में चला जाता है। तो देखो इंद्र के जीवन में एक डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, आरंभ से लेकर अंत तक। बृहस्पति के ऊपर जो अपराध किया वहां से लेकर अब तक उनके खेद का सिलसिला चलता ही जा रहा है, कोई अंत ही नहीं दिख रहा। तो भौतिक जगत में अपनी सत्ता बनाए रखने का प्रयास केवल संताप और क्लेश का ही कारण बनता है। तो अब इंद्रदेव बिल्कुल घबरा कर मुंह ताक रहे हैं वृत्रासुर का, और वृत्रासुर का एक हाथ कट गया है, हाथ में गदा है, उसको उठा के सीधा सर पे देंगे इंद्र के तो समाप्त। लेकिन फिर भी वृत्रासुर इंद्र को मारना नहीं चाहते, भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो मार नहीं रहे हैं, इंद्र को फिर प्रीचिंग कर रहे हैं, देखो बेटा इंद्र ये जगत का नियम है। और कहते हैं, युयुत्सुताम कुत्रचिदात तायिनाम जय सदैकत्र न वही परात्मनाम। फिलॉसफी और आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब इंद्रदेव ने कभी इतना क्लास कभी नहीं सुना होगा, जो वहां एक जगह बैठकर रणभूमि में डायरेक्ट वृत्रासुर के मुख से सुन रहा है, और बिल्कुल परफेक्ट फिलॉसफी बता रहे हैं वृत्रासुर। युयुत्सुताम कुत्रचिद आततायिनाम, देखो इंद्र युद्ध में कोई भी आतताई, कोई भी योद्धा, जय सदैकत्र नवै परात्मनाम, कभी सदा विजयी नहीं हो सकता. लाइफ इज अ बैटल, नोबडी इज एवर विक्टोरियस इन बैटल. देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज ऑलवेज विक्टोरियस, दैट इज कृष्ण. एक ही व्यक्ति है जो हमेशा हर युद्ध में विजयी होते हैं, वो है कृष्ण. वो एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी कोई भी मैदान में उतरेगा तो कभी जीतेगा तो कभी हारेगा, कभी जय तो कभी पराजय होनी ही है. युयुत्सुताम कुत्तसिदात्तायिनाम जयः सदैकत्र नवै परात्मनाम. वो परमात्मा को छोड़कर, भगवान को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जगत में ऐसा नहीं है जो कहेगा कि मेरे प्रयास हमेशा सफल होते हैं. कभी सफलता आएगी, कभी विफलता आएगी, तो इतने हताश क्यों होते हो? और ये बहुत जबरदस्त पॉइंट बता रहे हैं. विनय कमुत्पत्ति लय स्थिति वारम सर्वज्ञ माध्यम पुरुषम सनातनम. केवल वो पुरुष सनातन सर्वज्ञ हैं जो हमेशा विजयी रहेंगे. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत बात बढ़िया बात बताते हैं कि जो करवा रहा है सब कुछ भगवान, करता धरता सब वही है, हम केवल निमित्त हैं. कृष्णा इज द ओनली डूअर. देयरफॉर बोथ प्राइड इन विक्ट्री एंड मोरोजनेस इन डिफीट इज यूजलेस. प्राइड इन विक्ट्री, जीत गए तो अहंकार आ गया, प्रयास सफल हुआ अहंकार आ गया, हार गए तो हताश हो गए. तो जब हमारी सेवा सफल होती है तो मन में अहंकार आता है. क्यों? क्योंकि लगता है सूक्ष्म भाव में कि मैं करता हूं. तो सफलता के समय जितना अहम भाव होगा, विफलता के समय उतना ही क्लेश और दुख आएगा. क्योंकि सफलता के समय लगता है बस सब कुछ मैंने ही किया. कहने के लिए हम लोग औपचारिक रूप से कह देते हैं मैं कुछ नहीं प्रभु, सब भगवान ने किया है, लेकिन अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी कुछ तो हूं, कुछ तो मैंने भी किया है. और यदि लोग कहें क्या किया आपने, वाह 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 वाह, मनी मन सोचते पहचाना सही है इसने मुझे, बहुत सही पहचाना है, ज्ञानांजन शलाकया, इसके अज्ञान का सारा अंधकार दूर हो गया है, ज्ञान के पट खुल गए हैं, प्रगति कर रहा है, प्रगति के पथ पर है, समझ रहा है कि मैं कौन हूं. तो जब सफलता आती है तो मन में बड़ा उल्लास आता है और हमको लगता है कि मैंने क्या किया है. देखो जगत के लोगों, देखो आपके बीच कितना महान वैष्णव घूम रहा है, देखो अपने चरण कमल की धूली बिखराते हुए मैं घूम रहा हूं. तो कई बार मन में सूक्ष्म रूप से हमको लगता है कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूं. तो सफलता के समय तो बहुत आनंद आया, और कल के दिन कुछ सेवा फेल हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया, तो तुरंत हम ढूंढने लगते हैं किसने किया होगा, ये विफलता का कारण कौन हो सकता, मैं तो हो ही नहीं सकता, वो तो चांस ही नहीं है, मैं वो भी विफलता तो चांस है नहीं, दूसरा कौन है बताओ, और ढूंढते फिरते हैं. तो ऐसी अवस्था में लोग भी डर जाते हैं, आसपास नहीं आना चाहते, उनको पता है आसपास भटकेंगे तो पकड़ लेगा ये और हमको ही सूली पे चढ़ा देगा. तो कोई आसपास मिलता नहीं है तो सीधा भगवान के पास ही चले जाते हैं, बोलते वाह बांसुरी वाले तूने ही सब कुछ कर दिया, ठीक नहीं किया आपने. तो इस तरह से हमको लगता है कुछ गड़बड़ हुआ तो वहीं से कुछ गड़बड़ हुआ होगा. और अपने हिंदी पिक्चरों में तो बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं इसको कि हीरो जब फेल हो जाता है तो सीधा मंदिर में जाता है वो, और मंदिर में घंटी बजाता है और भगवान कहता है भगवान तूने क्यों किया ये. जब 10 चोरों को पीटता है और 10 लोगों को पीटने के बाद कभी ये नहीं दिखाते कि वो मंदिर में जाके भगवान को कह रहा है आपने शक्ति दी धन्यवाद, नहीं वो मैंने किया. और उसका हीरोइन किसी के साथ भाग गया तो भगवान के पास, भगवान क्यों हुआ ऐसे. तो जितना ऑडियंस बैठे हैं सबको लगता है जो गड़बड़ होता है सब वहीं से होता है, गड़बड़ का पूरा सोर्स ही वो है. तो मन में पूरा बिल्कुल कूट कूट के भर जाता है. तो इसलिए आजकल के मैं कह रहा था जो अभिनायक वगैरह हैं वही बड़े बड़े आराध्य देव हो गए, महाजन हो गए लोगों के. और दक्षिण भारत में तो तमिल के फिल्म में तो रजनीकांत करके हीरो है, वो जब स्क्रीन पे आता है तो लोग नारियल फोड़ते हैं, आरतियां उतारते हैं, क्या पागलपन है. जो भगवान के लिए किया जाता है वो सब कार्य यहां ऐसे हो रहा है। तो जब सफलता आती है तो बहुत आनंद आता है, और विफलता आती है तो गजल का कैसेट लगा देते हैं कि ओहो ये क्या हुआ। तो एक पूरा गजल का कल्चर क्या है कि मायूसी, गाने वाला मायूस है, सुनने वालों को और मायूसी में डुबा रहा है कि नहीं? तो क्या मूर्खता है। और ऐसे कई कई तथाकथित जो अपने प्रोफेशनल सिंगर लोग कुछ भी गाते रहते हैं और लोग भी सुनते रहते हैं। और एक बार जन्माष्टमी प्रोग्राम में मैं अचानक भारतीय विद्या भवन में पीछे के डोर से घुस गया था, अनूप जलोटा का प्रोग्राम हो रहा था, मेरे को पता नहीं था कि वो डोर डायरेक्ट स्टेज पे जाता है। तो मैं डायरेक्ट स्टेज पे गया और स्टेज के पीछे हमारे जो प्रसिद्ध भजन सिंगर हाथ में दारू की बोतल लेके गुड़गुड़ 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 बिल्कुल मगन है वो बिल्कुल, और पूरा दारू पीने के बाद बोतल बंद किया, जेब में रखा, स्टेज पे आ गए और शुरू हो गए, ऐसी लागी लगन। मैंने कहा वाह रे वाह, तुम्हारी लगन कहां लगी पहले? पहले इसमें लगन और उसके बाद मगन, और गा रहे हो राधा रानी का नाम, मीरा देवी का नाम, कृष्ण का नाम। तो औपचारिक रूप से इस तरह कोई गाना बजाता है और उसको सुन के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है? तो इसलिए अधिकांश लोग केवल विफलता के विषय में इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो भी अहंकार का एक चिन्ह है, मैं हार गया। अरे मैं जीता नहीं तो मैं हुई नहीं कहीं पर, तो फिर जीत और हार का प्रश्न ही नहीं, करवाने वाले वो हैं। तो यहां पर इंद्रदेव को वृत्रासुर वही कह रहे हैं, जो व्यक्ति सफलता के समय उल्लासित होगा वो विफलता के समय उतना ही दुखी होगा। जब सफलता आए तो समझना चाहिए भगवान ने करवाया, तब जाकर विफलता आए तो व्यक्ति समझ सकता है कि यह भी भगवान की एक लीला है, और तब जाके वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो प्रभुपाद जी बैंक का उदाहरण देते हैं, बैंक का एम्प्लॉय है तो कोई आके 5 लाख रुपए डिपॉजिट करता है तो रख लेता है, घर में आके पत्नी को नहीं कहता आज 5 लाख कमाया हमने, और कल आके वही 5 लाख विड्रॉ करने जाएगा तो बोलेगा नहीं मत निकालो यार, मैं कंगाल हो जाऊंगा, अरे तुम क्या, तुम्हारा तो रेगुलर पगार मिलता रहेगा। तो प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखते हैं कि सफलता में अहंकार और विफलता में मायूसी दोनों अनुचित है, हमको केवल एक ही कार्य करना है, मेक अ सिंसियर एफर्ट टू इंप्लीमेंट द विल ऑफ कृष्ण, प्रामाणिक प्रयास करो भगवान की इच्छा को पूर्ण करने की, बस ये वृत्रासुर का संदेश है। तो जीव हर परिस्थिति में भगवान पर पूरी तरह आश्रित है, इस तरह यह समझना है। और बहुत एक सुंदर स्टेटमेंट प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, व्हाट इज गेन एंड व्हाट इज लॉस, गेन एंड लॉस इज नथिंग बट मर्सी एंड चेस्टाइजमेंट ऑफ कृष्ण, व्हेन यू गेट गेन इट इज कृष्णस मर्सी, व्हेन यू हैव लॉस इट इज कृष्णस चेस्टाइजमेंट। So see the hand of Krishna in all situations. भगवान श्री कृष्ण का हस्ताक्षेप सफलता और विफलता दोनों में देखिए। जब लाभ हो तो समझना चाहिए कृपा है, हानि हो समझना चाहिए भगवान का प्रताड़न है। इस तरह से दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति समुचित भावना के साथ भगवत भक्ति कर सकता है। तो बहुत ही बढ़िया तात्पर्य प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं। और आगे वृत्रासुर कहते, पश्य माम निर्जितम शत्रु वृकणायुध मृधाम युधे घटमानम यथा शक्ति तब प्राण जिहीर्ष्या। अरे इंद्र पश्य माम, मुझे देख, एक हाथ कट गया है लेकिन फिर भी थोड़ी मैं बैठ के रोना रो रहा हूं, एक हाथ कट गया है लेकिन देख कितना उत्साह है मेरा, एक हाथ के साथ तेरी हत्या करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए मैं ये भी जानता हूं कि अमोघ अस्त्र तैयार हुआ है मेरी हत्या के लिए, लेकिन फिर भी मैं युद्ध करना नहीं छोड़ूंगा, मुझसे उत्साह प्राप्त कर, युद्ध कर, चल उठ। इस तरह से वो इंद्रदेव को ललकार रहे हैं। तो बारंबार इतना फिलॉसफी सुनने के बाद इंद्र भी थोड़ा जागता है, फिर अपने हाथ में वो अस्त्र उठाता है, और अस्त्र उठाने के बाद फिर आक्रमण करता है और वृत्रासुर के दूसरे हाथ को काट डालता है। तो अब लगेगा कि अब तो वृत्रासुर हार मान जाएंगे, तब भी नहीं छोड़ते, वृत्रासुर आगे लपकते हैं और इंद्रदेव को निगल जाते हैं, दोनों हाथ कट गए लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं। अब इंद्रदेव अंदर चले गए और अंदर जाकर ऐरावत के साथ, ऐरावत भी गए अंदर। ऐरावत को इस लीला में बहुत कुछ देखना पड़ा है। और अंदर पेट में प्रवेश करने के पश्चात पेट को फाड़कर वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद वृत्रासुर के गले को काटने का प्रयास किया। वो वज्र से जब काटते रहे तो 360 दिन लगे वृत्रासुर के गले को काटने के लिए। लेकिन चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जैसे ही इंद्र प्रवेश किए उस समय वृत्रासुर समाधि में जाकर अपने प्राण त्याग दिए और भगवत धाम पहुंच गए। तो इंद्र वास्तव में केवल डेड बॉडी को ही वो सर्जरी कर रहा था एक साल तक, मतलब जीवन भर तो परेशान था ही, और लास्ट में भी उसको जीतने का सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि जिसको मार रहा था पहले ही जा चुके हैं। खाली घर में खटखट करता रह गया वो एक साल तक बेचारा। एक साल के बाद दरवाजा खुला पता पड़ा कोई नहीं है। अरे पहले ही तोड़ के घुस जाते तो अच्छा था। तो बेचारे इंद्र के जीवन में ऐसी बहुत सारी परेशानियां हम देखते हैं। तो भागवत की विशेषता है कि इंद्र के नाम पर बहुत कुछ हम कह सुन लेते हैं और हंस लेते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी चेतना में भी इंद्र घुसा हुआ है और उस चेतना में से इंद्र को निकालना है और वृत्रासुर की जो चेतना उसको विकसित करना है, ये हमारे जीवन की चुनौती है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के वृत्रासुर प्रसंग से यही प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे भोग युक्त भक्ति से हमको छुटकारा पाना है और बिना किसी आशा के सेवा भाव के साथ भक्ति करना है। तो वृत्रासुर ऐसे सेवा भाव के प्रतीक हैं। तो प्रभुपाद प्रश्न पूछते हैं तात्पर्य में, हु वॉज विक्टोरियस? इंद्रा वॉज विक्टोरियस और वृत्रासुर वॉज विक्टोरियस। इंद्र ने वृत्रासुर को अपने वज्र के प्रभाव से हरा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। किसकी जीत हुई, प्रश्न ये है। इस पूरे प्रसंग में जीत किसकी हुई? गोल्ड मेडल किसको दें, इंद्र को दें कि वृत्रासुर को दें? चलो भाई थोड़ा अभी यहां पे कौन बनेगा करोड़पति करते हैं। उसमें एक इस्कॉन का भी प्रश्न आया था बीच में अभी, कि कोई आके कई लोग आके बताते रहते हैं प्रश्न क्या क्या आया। मैं पूछता लेकिन आपको पता कैसे पड़ा ये प्रश्न क्या है? वो मैं थोड़ा बहुत जानकारी के लिए देखता रहता हूं, जनरल नॉलेज के लिए। तो उसमें पूछा कि इस्कॉन में आई स्टैंड फॉर वॉट, ऐसा करके एक प्रश्न आया। तो इस्कॉन का भी नाम करोड़पति सीरियल में आ जाता है कभी कभी। एक दो और भी, एक बार संस्थापक आचार्य का उन्होंने पूछा था, प्रभुपाद का एक प्रश्न पूछ दिया था। तो काफी अपने लोग टच में रहते हैं। कहते मैं नहीं देखता, मेरे बच्चे देखते हैं, तो मैं बच्चों के पीछे बैठ जाता हूं। मैं बच्चों को देखता रहता हूं और वहां जो हो रहा है वो सुनता रहता हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि वास्तव में जीत किसकी हुई, वृत्रासुर की हुई। इंद्र को तो फिर इंद्र का पद मिल गया और फिर परेशानी आरंभ, और यहां वृत्रासुर भगवत धाम चले गए सदा के लिए जीत। तो भगवत धाम जाना ही वास्तव में विजय है, और ये अपने प्रयासों से वृत्रासुर ने हमारे समक्ष एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। तो इस प्रेरणादायक प्रसंग के माध्यम से हम अपने भक्ति के जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिसको अपने जीवन में लागू करना है, उतारना है। भागवत तो ऐसी शिक्षाओं का महासागर है कि उनमें से कोई एक शिक्षा भी हम पकड़ लें तो कई कई वर्ष निकल जाते हैं उसको अपने जीवन में उतारने। तो भागवत में सारे वेदों के सार और समस्त शिक्षाओं का निचोड़ दिया गया है, उसको ही यदि हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो पर्याप्त है। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूं कि भारी संख्या में आप लोग इन कथाओं में आए और मेरा उत्साह बढ़ाए, और प्रभुपाद के मिशन में आप लोग जो सक्रिय योगदान दे रहे हो, आपके उसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं। यही निवेदन करता हूँ कि इस तरह दिन दूनी रात चौगुनी आप लोगों की भक्ति में और उत्साह में वृद्धि होती रहे, और आप लोग यहाँ पर श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी शिला प्रभुपाद की सेवा में राधेश्याम प्रभु और बाकी यहाँ पर जितने लीडर हैं उन सभी का सक्रिय योगदान देते रहें। आप सभी के सत्कार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि शीघ्र ही भविष्य में आप सभी की सेवा करने का मुझे फिर से अवसर प्राप्त हो। कुछ अपराध हो गया हो तो क्षमा करें। श्रील प्रभुपाद की ताय गौर प्रेमानंदे। हाँ तो प्रश्न, कोई प्रश्न पूछना चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं। देन वी हैव दैट दामोदर अष्टक ऑल्सो वी हैव नाउ ओनली और इट इज ओवर।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव टू क्वेश्चंस, मेरे दो प्रश्न है। क्या कभी कभी मनन और चिंतन के लिए एकांत में जाना जरूरी नहीं है? इवन भगवान भी बोलते हैं विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदि,
विविक्त देश सेवित्वम, तो एकांत में जाना चाहिए कि नहीं?
पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि हम बहुत बार भगवान की इच्छा को तो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इन डे टू डे लाइफ में भगवान की इच्छा क्या है वो नहीं समझ पाते, द्वंद्व, तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए?
बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या नाम है आपका?
स्नेहल कुमार।
स्नेहल, स्नेहल, स्नेह का अर्थ जानते हैं क्या है? स्नेह का अर्थ होता है घी, शुद्ध घी, स्नेह। तो इसलिए स्नेह अर्थात प्रेम का वो स्तर जहां पर प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। जैसे घी स्वयं जल जाता है, घी स्वयं जल कर प्रकाश या प्रदीप प्रदान करता है, है कि नहीं? तो स्नेह अर्थात इतना प्रेम कि हम जल जाएं भगवान को और भक्तों को संतोष देने में, आनंद देने में, जगत को प्रकाश देने में। The love which is filled with sacrifice, that is sneha. तो पहला प्रश्न है ये अपना, ये क्या कली का कीर्तन चल रहा है बाहर? क्रिकेट मैच चल रहा है क्या? हाँ, स्कूल का मैच चल रहा है। तो ये क्या है? लगता है कृष्ण की बांसुरी है क्या? तो विविक्त देश में इनका प्रश्न है कि एकांत में जाना चाहिए कि नहीं, मनन और चिंतन करने के लिए भक्तों के संग में कैसे हो सकता है? क्योंकि भक्त लोग तो इतने हैं और सबके बीच में बैठ के आंख बंद किया तो कोई पीछे से जगा देगा, बोले उठो, बोले मनन कर रहा हूं। अरे सब जानते तेरा मनन क्या है, चल। मैं भी यही बोलता हूं, मैं समझता हूं क्या मनन हो रहा है तुम्हारा, उठ जाओ उठ जाओ चलो। तो यहां शांति से कोई मनन भी नहीं कर सकता, तो फिर यहां हरे कृष्ण में समझ में नहीं आता मनन कैसे किया जाए। और ये लोग, आप लोग हाथ में माला लेते हो, मंत्र जपते समय इतना जोर जोर से सर हिलाते हो और जोर जोर से चिल्लाते हो, ऐसा लगता है कि मंत्र के साथ झगड़ा कर रहे हो, प्रेम से बुला रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, खुन्नस से क्यों जप कर रहे हो बाबा, प्रेम से जप करो, भगवान आएंगे, ऐसे डरा दोगे तो दूर भागेंगे वो। तो जो नया व्यक्ति जो योग वोग सीख के आया है और मनन चिंतन और साइलेंट मेडिटेशन वगैरह करके आया है, वो हमारा जपा सेशन में आके झटका खा जाएगा। तो सब लोग बैठ के करे, बाप रे क्या हो गया, किस बात को मना कर रहे हो इतना आप? तो घबरा जाता है व्यक्ति, है कि नहीं? आपका भी कुछ अनुभव ऐसे ही रहा है लगता है। ये लोग योगी हैं कि महायोगी हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो जो योग का अपना एक कंसेप्शन रहता है वो हरे कृष्ण में आके कई बार बदलना पड़ता है कि नहीं? और फिर लगता है कि हमारा कीर्तन, और कीर्तन में लोग नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, आगे पीछे भागने लगते हैं, तो ये सब देख के लगता है ये क्या है? नहीं नहीं ये हमारी समाधि है, समाधि इतना भयंकर और इतने जोरदार एम्पलीफाइड समाधि. मैंने अपना कजिन को एक बार बोला मद्रास में कि आपका बर्किट रोड में मंदिर है, जरा जाके आओ वहां पे. वहीं रहता था वो अपना टी नगर में. तो गया वो सुबह सुबह मंगल आरती में. फिर अगले दिन मेरे को बोलता है तुम्हारे मंदिर में सुबह सुबह जॉगिंग करते लोग. बोले जॉगिंग करते क्या? बोले हाँ, भाग रहे थे सब लोग, हरे कृष्ण बोलते भाग रहे थे. बोले नहीं नहीं, उसको कीर्तन कहते. बोले नहीं नहीं, अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है सुबह सुबह जॉगिंग करना. तो बहुत लोग जो उस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, मेडिटेशन और बिल्कुल शांति, तो उन लोगों को काफी घबराहट होती है ये सब हरे कृष्ण का देखकर. तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि जो एकांत है वो एकांत का अर्थ क्या है. पहले तो एकांत में जाओ तो ठीक है, लेकिन आपको समाधि और ध्यान का विषय क्या है वो समझना चाहिए. ध्यान किस पे लगाओ? कृष्ण पे. तो कृष्ण के विषय में सुनोगे नहीं और पढ़ोगे नहीं तो ध्यान कैसे लगाओ? तो प्रभुपाद कहते हैं साइलेंट मेडिटेशन करके लोग कहते हैं, और कई लोग आधा घंटा साइलेंट मेडिटेशन करके बाहर निकल के कहते हैं बहुत फ्रेश लग रहा है. तो बोले आधा घंटा सोए अंदर बैठ के, और सोने के बाद बाहर निकलोगे तो अच्छा ही लगेगा और क्या. तो वास्तव में पहले श्रवण करना पड़ता है, और एकांत में आप श्रवण करने जाओ तमोगुण का प्रभाव पड़ जाएगा. किताब लेके बैठोगे उत्साह के साथ, लेकिन ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, पहले चेतावनी दे देते हैं कि इसके साथ ज्यादा समय बिताओगे तो इसका परिणाम भी घातक होगा यदि सत्वगुण का प्रादुर्भाव नहीं है. तो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से गीता भागवत हाथ में भी लोगे तो कुछ समय के बाद धड़ाम नींद आ जाएगी. वो निद्रा का प्रभाव पड़ता ही है. तो भले आरंभ में ना पड़े लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ता है. तो बहुत समय तक एकांत में पढ़ना भी किसी के लिए संभव नहीं. नाम जपने जाओगे तो वो भी एकांत में कुछ समय के बाद निद्रा का प्रभाव पड़ेगा. फिर उसके बाद एकांत में रहोगे लेकिन एकांत में सोओगे, एकांत में भजन नहीं कर पाओगे. तो बहुत ही उच्च कोटि के लोग ही हैं जो एकांत में भजन और समाधि में स्थित हो सकते हैं. बहुत ऊंचा स्तर है वो. तो अभी जो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है उसमें हमको भक्त लोग की आवश्यकता पड़ती है जो हमको मार्ग में बनाए रखें. तो इसलिए ये एकांत. और भगवान कहते हैं गीता में विविक्त देश सेवित्वम, है कि नहीं? लेकिन वो दो प्रकार के योगी हैं, एक योगारूढ़ और दूसरा योग आरुरुक्ष, है कि नहीं? तो पहले योगारुरुक्ष और योगारूढ़ का वर्णन करते हैं. जो योगी भक्ति के आरंभ के स्तर पर है वो योग अरुरुक्ष है, और जब वो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करने लगता है और ध्यान के स्तर पर आता है तब वो योगारूढ़ कहलाता है. धारणा और उसके आगे जब आता है तब वो योगारूढ़. और उसके लक्षण बताए हैं कि समलोष्ट्राश्म कांचन ही सीज गोल्ड एंड स्टोन इक्वली. और उस स्तर पर आने के बाद फिर आगे कहते हैं कि शुठोदेश प्रतिष्ठापे, उसके बाद वो श्लोक तब से आरंभ होता है, देन ही कैन गो टू द फॉरेस्ट. अभी आप सच सच बताओ, आपको मैं पत्थर उठा के मारूंगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. अगर सोने का बिस्किट लेके मारूंगा, सोने का बड़ा बड़ा गोला, अच्छा लगेगा? वो पता नहीं बोल रहे. मारने नहीं वाला, अपने पास है नहीं वो. सोने का बिस्कुट हाथ में है तो कोई मारेगा क्या? लेकिन बाय चांस हाथ में आ गया और मार भी दिया तो आप कहोगे प्रभु मैं बहुत पतित हूं और चलाओ, मार डालो मुझे, मारो मारो मुझे, छोड़ो मत, कोई कसर मत छोड़ो, जितना है सब मार दो. क्यों? भेद देख रहे हो, अंतर देख रहे हो. तो ऐसे स्तर पर आप विविक्त देश में जाओगे तो साथ में तकिया भी लेके जाना है. विविक्त देश में जाओ और जो शहर में सो नहीं पाए वो एकांत जगह में जाके सो, वहां भी न सो पाएंगे मच्छर आके काटेंगे। तो आज की तारीख में कलयुग का आदमी एकांत में जाना है तो हमको गर्म पानी के लिए कुछ व्यवस्था के लिए लेके जाना पड़ेगा, साथ में अपना मॉस्किटो नेट लेके जाना पड़ेगा और भोजन के लिए कुछ, क्योंकि वन में थोड़ी अपने को फल खाने की आदत है, शहर में तो फल इतना महंगा आता है खाने की आदत ही नहीं है, चावल दाल का प्लेट सस्ता है, फलाहारी बाबा बनेंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा हर रोज। तो कलयुग में कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता फलाहारी बाबा बनने का, बड़े बड़े लोग ही फल खाते हैं कलयुग में, साधु संतों के बस की बात नहीं है, भिक्षा भी मांगने जाओ तो लोग पुरानी चपाती देंगे, बोलेगा जरा सेब या केला दे, अच्छा पता है क्या रेट क्या तेरे को, बोले नहीं नहीं मैं साधु हूं केवल फल खाता हूं। वाह बड़ा अपुलंत साधु है, हमारे बच्चों को हम हफ्ते में एक दो दिन फल देते हैं और तू भिक्षा मांगते फल मांग रहा है कि नहीं, चावल दाल चपाती आपका 8-10 रुपए प्लेट में हो जाएगा और फल खाने जाओ बंबई में एक एक सेब 20-20 रुपए का आता है कि नहीं, तो फल भी खाओ और पेट भी ना भरे। तो इस तरह कलयुग में बहुत कठिन है इस तरह की तपस्या करना, और जंगल ही कहां बचे आजकल, और जंगल में जाओ तो वीरप्पन जैसे लोग घूमते रहते हैं वहां पर, साधुओं का संग करने जा रहे हो और मिलेंगे वीरप्पन, और वो मिले ना मिले पुलिस मिल जाएंगे उनको ढूंढते हुए, आपको ही पकड़ के ले जाएंगे, तू ही उसके गैंग का मेंबर है लगता है। अरे नहीं बाबा मैं योगी हूं। हाँ योगी, अच्छा योगी तो यहां क्या कर रहा है, तो बोले नहीं नहीं इस्कॉन से परेशान होके आया हूं। अच्छा इतना बड़ा संस्था छोड़ के आया, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ करके आया होगा, तो इसलिए कभी इस्कॉन छोड़ के जंगल में मत जाना, पुलिस पकड़ लेगी वीरप्पन का गैंग मेंबर सोच के। एक और कारण है इस्कॉन नहीं छोड़ने का और जंगल में नहीं जाने का, जंगल में आप मंगल करने जाओगे अमंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकांत में जाना है नहीं जाना है। तो यहां कीर्तन में बस आप मंत्र जपो, मंत्र के अंदर एकांत है, आप हो और मंत्र है और आप दोनों के बीच कोई नहीं, वो एकांत है। तो कथा है, तो कथा जो मैं कह रहा हूं आपके कान में सीधा जा रहा है कि नहीं, बीच में कोई उसको ब्लॉक तो नहीं कर रहा है कि नहीं, साइड का व्यक्ति आपका ब्लॉक तो नहीं कर रहा वाइब्रेशन, डायरेक्ट आपके अंदर ही जा रहा है, तो एकांत है सीधा, आपका और भगवान का सीधा सीधा संपर्क है, तो इस एकांत में कोई बाधा नहीं बन सकता, ये वास्तविक एकांत है। तो जो व्यक्ति इस तरह भगवान की चेतना में रहता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है 100 लोग हो, 1000 लोग हो, 2000 लोग हो, 10000 लोग हो, क्योंकि भगवान के चिंतन में वो निमग्न है। दूसरा क्या प्रश्न था आप? हाँ भगवान की इच्छा को इंप्लीमेंट कैसे करें, तो यहां मंदिर में बहुत लोग हैं जो आपको बताएंगे, लेकिन एक व्यक्ति से संपर्क रखना, नहीं तो 50 अलग अलग इंप्लीमेंटेशन के प्लान सुन के आप ही घबरा जाओगे। तो यहां पर सिस्टम है जहां पर मार्गदर्शन दिया जाता है, तो एक के साथ आप संपर्क रखिए और प्रोग्राम के बाद आप किसी को मिलिए और उनके साथ आप संपर्क जब रखेंगे तो भक्त आपको भगवान की सेवा में लगाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग वो चैतन्य चरण प्रभु प्रश्न पूछना चाहते हैं।
Guruji, quoting Prabhupada, this pride in victory and moroseness in defeat are both useless. Prabhupada also says that we make advancement to the extent we become responsible. So when we are responsible, that means it is expected that we try to get the result. So then in what attitude should we strive for the result? And if we are carefree when the result doesn't come, then how is that responsibility?
There is only one responsibility. Samsiddhir Hari Toshanam. Are we satisfying Krishna with this effort? So, तो प्रश्न इनका यह है कि उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि हम कुछ उचित फल को प्राप्त करें। तो कर्म के जो 5 फैक्टर बताए गए हैं उसमें 5वां फैक्टर है दैव या परमात्मा। तो बाकी अन्य जो 4 हैं उन फैक्टर को पूरी तरह आप प्रयोग करो, लेकिन भगवान का भक्त सेवा करते समय फल की चिंता नहीं करता, वो एक दिशा में प्रयास करता है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल उदासीन भाव से सेवा करता है. तो अर्जुन सेवा कर रहे थे युद्ध में, अर्जुन वॉज फाइटिंग, और उतने ही उत्साह के साथ तीर चला रहे थे जितना द्रौपदी के, द्रौपदी को अपने वधु के रूप में, अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने के समय. तो युद्ध भूमि में अर्जुन ने यह नहीं सोचा कि मेरा तो मूड है नहीं फाइटिंग का, जबरदस्ती कृष्ण करवा रहे हैं, ये मुझे जबरदस्ती सेवा दे दी गई है, ठीक है करेंगे, मूड आएगा तो करेंगे. और बिल्कुल उदासीन भाव में और तीर वहीं पे गिर रहा है नीचे, और कृष्ण बोले अर्जुन युद्ध करो ना, कर रहा हूं ना, एक घंटा लेक्चर सुनाया जबरदस्ती, उसके बाद युद्ध नहीं करेगा तो एक और लेक्चर शुरू हो जाएगा, तुम्हारा दूसरा लेक्चर से बचने के लिए चला रहा हूं ये, अब मुंह मत खोलना. इस उदासीन भाव से वो युद्ध नहीं कर रहे थे, फुल फोर्स के साथ फाइट कर रहे थे, है कि नहीं. और ऐसा नहीं कि युद्ध करते करते अचानक कृष्ण मुड़ के देखे और अर्जुन खुर खुर सो रहे पीछे, ले अर्जुन ये क्या हुआ, उठ उठ सोने दो ना, इतना मुझे तपस्या करना पड़ता, तुम्हारा क्या बैठ के बस गाड़ी चला रहे हो. तो अर्जुन ने कभी इस तरह से कोई उदासीन भाव व्यक्त नहीं किया. इच्छा कृष्ण की थी लेकिन कृष्ण की इच्छा को लेकर पूरा उन्होंने अपना तन मन धन लगाया, लेकिन उसमें भी कब कभी जीत हुई कभी पराजय हुआ वो सब कृष्ण को ही समर्पित किया. तो उत्तरदायित्व का अर्थ है कि हम प्रयास करें, और प्रयास करते समय योजना बनाए कि यदि इस तरह प्रयास करूंगा तो इस तरह फल मिलेगा, लेकिन आगे जो फल मिलेगा कि नहीं वो कृष्ण के ऊपर है, लेकिन अपनी ओर से मैं पूरा प्रयास करूंगा. तो प्रयास करते समय योजना भी बनानी है तो फल को मन में रख के ही योजना बनानी है, और फल को मन में रख के योजना बनाएंगे उसके पश्चात फिर आप केवल क्षण क्षण प्रयास पर ध्यान दो. तो योजना बनाने तक आप फल की चिंता करो, किस योजना के माध्यम से किस तरह का फल मिलेगा, इस तरह से आप. और कई बार चुनौतियां ऐसी होती हैं कि योजना और फल में हम लोग कनेक्शन भी नहीं देख पाते. टू अचीव दिस गोल व्हाट एफर्ट टू पुट आल्सो आई एम कंफ्यूज्ड बिकॉज द गोल इज सो डिफिकल्ट एंड आई हैव नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट बिफोर. So there are two types of services. One service you already experienced and you know if you do a certain kind of effort you get a certain type of result. So that's much easy. But for example, instruction of Prabhupada to go to America and preach. So there is no previous experience, no previous record, no other example to follow. So it is just a certain result which is expected. So what steps to take to achieve that result is not something which Prabhupada has in his mind like step by step. I will do this step one, then this step two, then this, this, this. It is all depending on Krishna. So therefore, certain plans we can implement with our intelligence. But when we go ahead in bhakti, the challenges become more intense. And therefore, we have to use all our intelligence more than in plan making, in focusing our attention on depending on Krishna. Because ultimately we realize that we are helpless. So in the initial stages of bhakti, we will be able to correlate our effort with the result we are getting. But then you will come across experiences where you clearly know that this is not the way I had planned I will work. But I worked in a certain way, but some other very miraculously positive results came. So that really gives me the understanding that Krishna is at work. So if every effort gives you the result the way you planned, then there is no excitement. And there are chances that you will really start thinking, I am the doer. So Krishna will keep all the strings with him and keep playing now and then to make sure that you remain humble and realize, okay, I am not the doer. Krishna is the doer. And every devotee has that experience in his preaching, in his spiritual life. So therefore, what is the meaning of accepting responsibility? The biggest responsibility we have to accept is take anxiety on Krishna's behalf. So Krishna has this desire to deliver the souls, so we take that anxiety upon ourselves and then we try our best and leave the rest to Krishna. Okay? Jai Srila Prabhupada ki Ur Priman. No, it's 11:30.